शहर की ओर, जब चले शहर की ओर।
नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेन।
और मैं हूं अंजलि, आपकी दोस्त।
आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम जिसका नाम है
जब चलें शहर की ओर।
अंजलि, शहर का दूसरा नाम है भागदौड़।
भागदौड़?
हाँ भाई, सुबह घर से निकलना, फिर ऑफिस पहुंचने के लिए बसों और ट्रेनों के लिए भागना, फिर दफ्तर में काम पूरा करने की दौड़, नौकरी बरकरार रहे इसके लिए दूसरे लोगों से ज्यादा मेहनत करने की दौड़, फिर शाम को घर जाने के लिए एक बार फिर भीड़ भड़क में ट्रेन या बस पकड़ने की दौड़। अब ये सब भाग दौड़ नहीं तो और क्या है?
हाँ नरेन, ये बात तो है। शहर में जिंदगी चलती नहीं, दौड़ती है। लेकिन वो शहर ही है जहाँ लोगों को बार बार मौके मिलते हैं अलग अलग क्षेत्रों में अपने हुनर को परखने के लिए, फिर चाहे बात दिल्ली की हो या माया नगरी मुंबई की। बस थोड़ी सी प्लानिंग और थोड़ा सा विवेक और सपने साकार भी होते हैं। अब ऐसे में कुछ पाने के लिए दौड़ना तो पड़ेगा ना।
हाँ अंजलि, लेकिन एक बात तो मैं कहूँगा, जब लोग बसों और ट्रेनों में चलते हैं तो उन्हें कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए, कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। आए दिन शहरों में कोई ना कोई हादसा केवल लापरवाही के कारण ही तो होता है।
बिल्कुल, लेकिन उन सभी बातों पर चर्चा करने से पहले चलो सुन लेते हैं धारावाहिक शहर की ओर की अगली कड़ी।
कपड़े रख लिए, बाकी का सामान भी हो गया, और क्या रह गया?
ये पैसे, इन्हें भूल रहे हैं आप?
अरे हाँ, पैसों को तो मैं भूल ही गया था, इनके बिना तो वहाँ कुछ काम ही नहीं होगा।
भैजी ये लीजिए अचार, इसे भी रख लीजिए।
अरे अब इसे कहाँ रखूँगा, बैग में वैसे भी जगह नहीं है।
मुझे नहीं पता, नहीं रखोगे तो माँ नाराज हो जाएगी।
अच्छा ला तो फिर।
ये लीजिए।
चुटकी, ए चुटकी।
आई माँ।
मधु, ए मधु, अब तुम्हें क्या हो गया?
कुछ नहीं।
उदास है मेरे शहर जाने से, तो मैं शहर नहीं जाऊँ?
मैंने ऐसा तो नहीं कहा।
फिर क्या बात है, अब क्या इस उदास शहर से विदा करोगी मुझको? ऐसा लग रहा है जैसे मैं फिर कभी लौट कर ही नहीं आऊँगा।
खबरदार जो ऐसी बातें कहीं तो, आपको और मुझे तो अभी पूरी जिंदगी साथ गुजारनी है।
तो फिर मुझे मुस्कुराते हुए विदा कर, अगर ये उदास चेहरा देख कर जाऊंगा तो वहां जाकर मुझे चैन नहीं मिलेगा। चला मुस्कुरा, मुस्कुरा दे।
चंदर जल्दी आ यार, बस छूट जाएगी।
लगता है उमेश आ गया। मधु अच्छा मैं चलता हूँ, फौजी का ख्याल रखना, घर और खेतों को अच्छे से संभालना, माँ की सेवा करना, सब कुछ तुम्हारे भरोसे छोड़े जा रहा हूँ।
ठीक है बेटा, बाहर उमेश आ गया, बुला रहा है तुझे।
अच्छा मैं चलता हूँ, आशीर्वाद देना।
जीता रहे बेटा। बेटा मेरा आशीर्वाद तो हमेशा से तेरे साथ है, लेकिन जाने से पहले माँ भगवती का भी आशीर्वाद ले ले। ये ले प्रसाद।
हाँ माँ, जय माँ भगवती की।
चंदन अबे जल्दी आ जा यार भाई, अगर बस छूट गई तो फिर कल ही जाना होगा।
आ रहा हूँ।
अच्छा माँ मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना।
ठीक है बेटा, तू भी अपना ध्यान रखना, और सुन पहुँचते ही फोन कर देना। बेटा ये सुंदरू की बारी है, तुझसे मिलने आई है।
नमस्ते।
द्यूर जी आप दिल्ली जा रहे हैं ना, ये कुछ सामान है, ये जरा उनको दे दीजिएगा, वो भी वहीं दिल्ली में ही है। ये उनका फोन नंबर है।
ठीक है दे दूंगा। अच्छा माँ मैं चलता हूँ।
हाँ बेटा जा।
क्या चंदर कितनी देर लगा दी, पता है बस निकल जाएगी।
अरे यार घर वाले छोड़ ही नहीं रहे थे, फिर वो सुंदर की बौरी भी आ गई, बोली ये कुछ सामान है इसे पहुंचा देना।
ठीक है अब चल।
दिल्ली 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 दिल्ली, बैठो 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 बैठो, ओ बैठो बैठो, दिल्ली 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 दिल्ली।
अरे चंदर शायद वो बस जाएगी, मैं पता करके आता हूँ, तू यहीं रुक।
दिल्ली 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 दिल्ली।
हाँ भैया दिल्ली जाएगी।
अरे जाएगी जाएगी, बैठो बैठो।
चंदर आ जा
यार, वो देख पीछे तो सीटें हैं।
हाँ हाँ चल
यार। अच्छा हुआ हम टाइम पर आ गए।
हाँ अगर थोड़ी देर तुम्हारा वो मिलाप चलता रहता तो सीट नहीं मिलती।
चलो उस्ताद टाइम हो गया।
ले बस भी चल पड़ी।
अच्छा उमेश, हम वहाँ रहेंगे कहाँ? मेरा मतलब है कुछ इंतजाम वगैरह है वहाँ पर?
अरे उसकी चिंता मत कर, पहले सीधे कल्पना भौजी के यहाँ चलेंगे, फिर देखते हैं।
कल्पना कौन?
अरे वो शोभन नहीं था?
हाँ हाँ,
उसके चचेरे भाई की बुआरी। बेचारी पति के देहांत के बाद खुद अकेले ही घर की गाड़ी खींच रही है।
अच्छा, लेकिन शोभन तो दुबई गया था ना?
हाँ, पर पहले वो मेरे साथ ऋषिकेश में तो काम करता था।
अच्छा।
हाँ, तो उसके साथ कई बार दिल्ली गया हूँ मैं, और तब कल्पना भौजी के वहाँ तो रुके थे हम लोग।
फिर ठीक है,
चल यार थोड़ा सो लेते हैं, अब तो बस सीधे रात के खाने के लिए रुकेगी।
हाँ यार, ऐसे मुझे भी काफी नींद आ रही है।
बुआरी, ए बुआरी, अरे कपड़े अभी तक बाहर पड़े हैं। अरे रात होने वाली है, ले, लगता है बारिश भी आने वाली है, चल जल्दी से कपड़े अंदर ले आ।
जी माँ जी।
और वो मिर्च सुखाने रखी थी, वो ले आई क्या अंदर?
वो भी अभी ले आती हूँ।
भौजी चलो मैं आपकी मदद कर देती हूँ।
छुटकी ये ले, तू ये कपड़े लेकर अंदर चल, मैं मिर्ची लेकर आती हूँ।
लाइए। भौजी ये आपकी आँखें इतनी लाल कैसे हुई?
कुछ नहीं।
समझ गई, आपको भैजी की याद आ रही है ना, क्या आप रो रही थी?
तुम बहुत बात करती हो छुटकी, चल अब अंदर ये लेकर जा, बारिश आने वाली है।
बुआरी जल्दी करना, अरे वो मिर्च जल्दी से उठा ले, अगर पानी पड़ गया तो सब खराब हो जाएंगी। और ये गाय को अंदर बांध दे, और उसके बाद मेरे लिए पानी गर्म कर, जा।
बस माँ जी अभी किए देती हूँ।
अभी किए देती हूँ, पता नहीं क्या हो गया आजकल की इन लड़कियों को, काम करने में तो इनकी जान निकलती है। और एक मैं थी, काम के मामले में कभी अपनी सास को शिकायत का मौका नहीं दिया।
भगवान ये कैसी किस्मत लिखी है तुझे मेरी, मैं ऐसे यहाँ अकेले कैसे रहूंगी।
अरे नाश्ता पानी कर लो जिसको करना है, बस सिर्फ आधे घंटे रुकेगी।
चल चंदर हम भी कुछ खा लेते हैं यार।
हाँ चल।
आजा यहाँ बैठते हैं, तेरे पास पैसे हैं ना?
हाँ।
तो फिर अच्छा खाना ऑर्डर करते हैं। ओ भाई।
हाँ साहब।
एक काम करो, 6 रोटी, 1 प्लेट कबाब, 1 दाल फ्राई, और हाँ 1 पनीर भुर्जी। और चंदर तू कुछ लेगा? और
नहीं यार बस यही काफ़ी है।
तो ठीक है, जल्दी जाओ और फटाफट लेकर आओ।
ठीक है साहब।
उमेश, उमेश।
अरे ललित बड़े दिनों बाद।
हाँ लेकिन तू कहाँ, दिल्ली जा रहा है क्या?
हाँ यार। अच्छा इससे मिल, ये मेरा दोस्त है चंदर।
नमस्ते।
नमस्ते भाई, कैसे हो?
जी ठीक हूँ।
और बताओ उमेश तू दिल्ली क्यों जा रहा है?
अरे यार बस ऐसे ही कुछ काम आ गया है, और चंदर नौकरी देखने जा रहा है।
नौकरी? कैसी नौकरी?
अब वो तो वहीं जाकर पता लगेगा कि कैसी नौकरी मिलती है।
वैसे मैं जिस होटल में काम करता हूँ वहाँ एक खाना बनाने वाले की और एक वेटर की ज़रूरत है। अच्छा पहले तुमने कहीं काम किया है?
नहीं।
ओहो, फिर तो शायद वहाँ काम ना हो पाए, उन्हें एक्सपीरियंस आदमी चाहिए।
ललित दोस्त मेरे लायक भी किसी कंपनी में नौकरी है तो बता यार।
अरे तू कहाँ हमारी तरह नौकरी करेगा यार, वैसे अगर कोई नौकरी पता चलती है तो बता दूंगा। ओह लगता है मेरी बस चलने वाली है, अच्छा अब मैं चलता हूँ यार, और हाँ फोन करूँगा तुझे। ठीक है?
ठीक है ठीक है, फिर मिलते हैं।
हाँ ठीक है, ओके बाय।
उमेश यार मुझे नौकरी तो मिल जाएगी ना, मेरे पास तो एक्सपीरियंस भी नहीं है।
तू डरता क्यों है यार, मेरे और भी दोस्त हैं, तुझे कहीं ना कहीं जरूर लगवा देंगे।
आपका खाना साहब।
चल अब खाना खा, बड़ी भूख लगी है यार।
अच्छा अंजलि तुम्हें क्या लगता है चंदर को शहर की पहली सबसे अच्छी बात क्या लगेगी?
नरेन अब चंदर के बारे में मैं कैसे बता सकती हूँ, लेकिन हाँ हमने अपने प्रवासी दोस्तों से जरूर पूछा है कि जब वो पहली बार शहर आए तो ऐसी कौन सी बात थी जिसने उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित किया, वो कौन सी पहली याद है जिसे वो कभी नहीं भूल पाते, और जब भी शहर की बात होती है तो वो बात खुद ही उनकी जबान पर आ जाती है। तो आइए सुनते हैं कुछ ऐसी ही बातें हमारे अगले सेगमेंट में।
जब आप पहले बार दिल्ली आए तब आपको कैसा लगा शहर के बारे में?
जब मैं पहली बार दिल्ली में आई तो मुझे बहुत भीड़ भड़का और एक अजीब सा डर था मेरे अंदर। हम आनंद विहार वाले बस अड्डे पर उतरे, वहाँ जाकर मैंने देखा वहाँ तो बसों की कतार लगी हुई थी, इतनी बसें थी जितनी मैंने शायद कभी पहले देखी भी नहीं थी। उस भीड़ बस में लोग चढ़ रहे थे, उतर रहे थे, इतनी तेज़ी से चढ़ रहे थे कि जैसे कि वो भागेगी बस बिना किसी को लिए।
जब मैं पहली बार दिल्ली आया तो मैं आनंद विहार बस अड्डे पर उतरा था, तो मैंने देखा वहाँ पर लोगों की इतनी भीड़ थी और बसों की भी इतनी भीड़ थी, और तो मुझे डर लगने लगा और मैं अपने भाई का हाथ पकड़ कर चलता रहा। मेरे को लगता था कि अगर मेरा हाथ भाई के हाथ से छूट गया तो मैं खो जाऊंगा।
मैं यहाँ दिल्ली में आया था 2003 में, पर यहाँ आके मुझको इतनी ठोकर लगी कि मैं कुछ कर भी नहीं पाया। मुझे यहाँ पे बहुत सारे मतलबी दोस्त मिले, मतलबी फ्रेंड्स मिले, पर यहाँ वो ऐसा नहीं है जो गांव जैसा, हमारे इधर गांव में बहुत अच्छा रहता है। यहाँ आके मुझको बहुत बेकार लगा।
1979 में जब यहाँ आया तो यहाँ की चहल पहल देख के मेरे को बड़ा अच्छा लगा। गांव में उस टाइम लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई ऐसा चीज़ नहीं था, और यहाँ पे उस टाइम सब कुछ चहल पहल थी, बहुत अच्छा यहाँ पे महसूस हो रहा था। दिल्ली में गांव की लाइफ में और यहाँ की लाइफ में बड़ा ज़मीन आसमान का अंतर महसूस हुआ, और फिर मैंने सोचा कि चलो नौकरी अगर यहाँ लग जाती तो बहुत बढ़िया। यहाँ पे
भागदौड़ में एक बात तो होती है नरेन, कि नए अनोखे रोमांचक अनुभवों की कमी नहीं होती।
हाँ अंजलि, ये तो है, हर दिन एक नई चुनौती के साथ शहर आपका इंतजार कर रहा होता है।
अब जैसे मुंबई में लोकल ट्रेन में सफर करना अपने आप में एक चुनौती है।
इसीलिए तो अंजलि, आज के हमारे सेगमेंट कुछ विश्वास में हम लाए हैं मुंबई की लोकल ट्रेन और रेलवे स्टेशन की एक झलक।
हम खड़े हैं मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर। यहाँ हर तरफ भागदौड़ मची हुई है, कुछ लोग ट्रेन से उतर रहे हैं तो कुछ अनाउंसमेंट्स को सुनकर अपने अपने ट्रेनों में चढ़ रहे हैं। वाकई ही इतने लोगों की भीड़ को देखकर डर भी लगता है, लेकिन जिस सुदृढ़ता से ये लोग भीड़ से जूझ रहे हैं वो देखकर एक आश्वासन भी मिलता है कि शायद ये इतना मुश्किल भी नहीं। मुंबई के लोकल ट्रेनों के बारे में और जानकारी के लिए चलिए हम बात करते हैं श्री पीताम्बरन से, जो मुंबई के सेंट्रल रेलवे के सीनियर पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर हैं। सर, क्या आप हमें बता सकते हैं कि मुंबई के लोकल ट्रेनों में रोज कितने लोग सफर करते हैं?
सेंट्रल रेलवे के सबर्बन सिस्टम में करीब 3.4 मिलियन पैसेंजर्स रोज सफ़र करते हैं, और इनके सुविधा के लिए सेंट्रल रेलवे 1,359 सर्विसेस माने गाड़ियां ट्रिप्स करते हैं।
चलिए अब जानते हैं लोकल ट्रेन में सफ़र करने वाले यात्रियों से कि इन भीड़ वाली ट्रेनों से आखिर कैसे जूझें।
ट्रेन आती है, जब भी हम लोग चढ़ते हैं तो अपना पैकेट संभालते हैं और अपना कहीं सोना चांदी डाला रहेगा वो संभालते हैं। ट्रेन में उतरने से पहले पहला तो अपन वो खंभा पकड़ते हैं ना, वो पकड़ना मांगता है व्यवस्थित, और उतरने से पहले प्लेटफॉर्म ऊंचा रहता है उसके लिए संभाल के उतरना मांगता है, अपना सब सामान अपने पास रहेगा वो संभाल के रखना मांगता है।
ट्रेन में चढ़ने के पहले तो देखना चाहिए वेदर, ट्रेन इज फास्ट और स्लो। सेकंड थिंग, चढ़ने के टाइम पे अपना जेब संभालना पड़ता है, पिक पॉकेटर्स आर मोर इन द ट्रेन्स, वो फ़ायदा उठाते हैं उसका। और चढ़ने के टाइम पे शूज़ भी नीचे नहीं रहना चाहिए। तीसरा, कभी वो चढ़ने के टाइम पे वो भी देखते हैं लोग।
ट्रेन से उतरते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए?
कोई चीज़ ऊपर छोड़ के तो नहीं गया, वो ऊपर बैग रखते हैं वो टाइम पे, और सही स्टेशन पे उतर रहा हो कि नहीं, और संभालने के टाइम पे भी वही, नहीं तो कोई भी ढकल देगा ट्रेन पे तो प्लेटफॉर्म पे नीचे सो जाएंगे हम लोग।
सुबह के टाइम और शाम के टाइम गर्दी रहती है, आपको कहीं जाना है घूमने फिरने तो आप 12 के बाद दिन को जाइए। गाड़ी जब तक नहीं रुकती तब तक चढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रेन में गर्दी रहती है सुबह से। जैसे आप चढ़ेंगे अंदर से आदमी धक्का देते हैं, आप बाहर से जब चढ़ेंगे ना अंदर धक्का मार के चढ़िए, नहीं तो आपको बाहर गिरा देंगे। और धीरे धीरे आप अंदर जाइए, जहाँ आपको उतरना है, मतलब आपका जो हॉल्ट है, स्टेशन है उतरने का, वहीं पर धीरे धीरे आपको जगह बनाना पड़ेगा उतरने का टाइम।
तो ये तो थी लोगों की राय, लेकिन अगर आप फिर भी इस भीड़ से जूझ नहीं पाए और स्टेशन में भटक गए तो क्या करें? चलिए सुनते हैं रेलवे अधिकारी क्या सलाह देते हैं।
मुंबई जैसे शहर में भीड़ भाड़ में खो जाने का अवस्था हमेशा बना रहता है, इसलिए ये हमेशा अच्छा रहेगा अपने घर से या अपने गांव से निकलने से पहले जहां आपको जाना है उसका सही एड्रेस और जिस व्यक्ति से आपको मिलना है उनको पहले ही संदेश दे के उनको स्टेशन पर बुला लें। जहाँ तक स्टेशन में अनजान जगह या ऐसा घूम जाने का अवस्था हो गया तो सबसे पहले उनको स्टेशन मैनेजर से संपर्क करना चाहिए, और जो सुरक्षा अधिकारी वहाँ होते हैं जीआरपी के या आरपीएफ के, उनसे भी मदद ले सकते हैं।
अंजलि, वैसे तुमने कभी ट्रेन में सफर किया है?
लो, ये भी कोई पूछने की बात है?
अंजलि, मैं लोकल ट्रेन के सफर की बात कर रहा हूँ।
लोकल ट्रेन? ना बाबा ना, लोकल ट्रेन में तो भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा होती है और मुझे भीड़ भाड़ से बहुत डर लगता है। कब किसका सामान चोरी हो जाए, कब किसकी जेब कट जाए, कुछ भी पता नहीं चलता।
ऐसा कुछ नहीं होता, जरूरत होती है सिर्फ जागरूक रहने की और कुछ सावधानियाँ बरतने की।
कैसी सावधानियाँ नरेन?
ये बातें अगर भैजी बताएं तो ज्यादा अच्छा होगा ना।
लो, भैजी तो यही है।
मैं हूँ भैया भाई सब, मुझसे करो सवाल, बात हो छोटी बड़ी हो या फिर हल देता हूँ निकाल, बात करता हूँ लाख पते की, पूछो कोई सवाल, क्योंकि मैं हूँ भैजी लाल, मैं हूँ भैजी लाल।
हाँ तो भाई बताइए, आज कैसे याद किया आप दोनों ने?
भैजी, हमारे प्रवासी दोस्तों को आपकी कीमती सलाह की बेहद जरूरत है। आज हम चाहते हैं कि उन्हें ट्रेनों के सफर के दौरान बरतने वाली सावधानियों के बारे में आप उन्हें बताएं।
बिल्कुल बताएंगे भाई। ये भागदौड़ भरी जिंदगी और ट्रेन का सफर, इसमें सबसे पहली और जरूरी बात तो मैं ये कहूँगा कि लोग कभी भी चलती ट्रेन के पीछे न भागें, उसमें चढ़ने की कोशिश बिल्कुल न करें। अरे भाई, अगर आप लेट हो गए और ट्रेन छूट गई तो छूट गई, उसके पीछे भागिए मत।
लेकिन भैजी, ऑफिस भी तो जाना है ना, और फिर मुंबई में ऑफिस आने जाने वाले ज्यादातर लोगों को ट्रेनों का ही तो सहारा है।
ठीक है, ये बात तो मैं मानता हूँ कि अगर आपकी ट्रेन छूट जाती है तो आप ऑफिस के लिए लेट हो सकते हैं, लेकिन मैं ये भी पूछता हूँ कि अगर इस भागदौड़ के चक्कर में आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, भगवान ना करे ऐसा हो, और अगर आपकी जिंदगी आपसे रूठ जाए तो फिर आप क्या करेंगे?
लेकिन भैजी, फिर ट्रेन पकड़ने के लिए लोग क्या करें?
अरे ट्रेन तो फिर आएगी, जाएगी कहाँ? अब मुंबई में तो ट्रेन हर 2 मिनट में मिलती है, ज्यादा ही जल्दी है तो अपने आप को थोड़ा अनुशासित करें, घर से समय से 10 मिनट पहले निकल लो, कम से कम इस तरह ट्रेन के पीछे भागने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी।
बिल्कुल भैजी।
अब दूसरी बात।
वो क्या भैजी?
ट्रेन में कभी भी दरवाजे पर लटक कर सफर ना करें, जैसे हमारे बम्बैया फिल्म के हीरो करते हैं, मेरे सपनों की रानी कब आई। अरे भाई, हीरो बनने के और भी कई रास्ते हैं, ट्रेनों पर अपनी मर्दानगी ना दिखाएं तो ही अच्छा। और हाँ, ट्रेन के ऊपर या 2 बोगी के बीच में कभी ना बैठें। ये बात तो मैं मानता हूँ कि दरवाजे पर भीड़ रहती है, लेकिन कैसे भी करके अंदर पहुँच जाइए, जो अंदर जा रहा है उसके पीछे खड़े रहिए और धीरे धीरे उसके पीछे पीछे अंदर की ओर चलते चलिए।
लेकिन भैजी, मुंबई में तो हर स्टेशन अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आता है और इसके लिए उद्घोषणा भी नहीं होती, जिससे लोगों को उतरते वक्त कई बार दिक्कतें होती हैं।
अरे नरेन, ये तो तुमने बिल्कुल सही समस्या बताई, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। जब मैं पहली बार मुंबई गया था तो मैं सामने वाले दरवाजे की तरफ चलता चला गया और पता चला कि जिस दरवाजे से चढ़ा था उसी से 15 मिनट बाद उतरना था। फिर तो भाई, जैसे ही मैं पीछे मुड़ा और जो धक्का मुक्की हुई, जो गालियां दी लोगों ने, मजा आ गया। अरे भाई, उसके बाद तो मैंने तौबा कर ली, जब भी ट्रेन में चढ़ता तो पहले 2 लोगों से पूछता कि भाई मेरा प्लेटफॉर्म किस तरफ आएगा। बम्बई में ये खासियत है कि लोग आपको बताएंगे जरूर, मदद करते हैं लोग।
जी भाईजी।
अगर आपको वहीं से उतरना है जिस तरफ से आप चढ़े थे तो साइड में खड़े रहिए, सीट मिल जाए तो बैठ भी जाइए, और अगर आपको सामने वाले दरवाजे से यानी कि दूसरी तरफ से उतरना है और भीड़ बहुत है तो सामने वाले साथियों को बोलिए कि आपको फला स्टेशन पर उतरना है, भाई भीड़ बहुत ज्यादा है और आपको आगे जाने के लिए थोड़ी सी जगह दें, तो सब लोग आपका सहयोग करेंगे। इसमें आपको शायद थोड़ी बहुत धक्का मुक्की करनी पड़ सकती है, और ये तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा, करत करत अभ्यास से जड़ मत हो सुजान।
बिल्कुल भैजी, बिल्कुल भैजी। मैंने अभी तक तो लोकल ट्रेनों में सफर नहीं किया है, लेकिन अब लग रहा है जैसे शायद इसका भी अनुभव होना जरूरी है।
बहुत जरूरी है अंजलि, और सही जानकारी के साथ ये एक मजेदार अनुभव भी हो सकता है।
जी भैजी।
चटकीलो बिलोज त्योरु मटकीली साड़ी, चटकीलो बिलोज त्योरु मटकीली साड़ी, अग्नि भी देखे बोझी लमड़ी नी पड़ी, हमे अग्नि भी देखे बोझी लमड़ी नी पड़ी।
रोज रोज प्यों दो दुरा तुवे शराबा,
पर धरियो बॉजी रे समीर माल गोला पर लगायो बॉजी सोना कुहार मिसी पर चली बॉजी बट देख दी रे बुढ़ा जा मरी चाला तुई पर देखी इनु ना मार मेरी बॉजी मार मेरी बॉजी थी कोडी से की इनु ना मार मेरी बॉजी थी कोडी से की अग्ने भी देखे बॉजी लमड़ी नी पड़ी सची अग्ने भी देखे बॉजी लमड़ी नी पड़ी
दोस्तों आप सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम जब चलें शहर की ओर।
और हाँ, कार्यक्रम के बारे में एक बात और हम आपको बता दें कि ये कार्यक्रम फोर्ड फाउंडेशन और इक्वल एक्सेस के वित्तीय सहयोग से आइडियो सिंक मीडिया कंबाइन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है।
और साथ ही हम धन्यवाद करते हैं अपने सहयोगियों हेवलवाणी चंबा, मंदाकिनी की आवाज भणज और दिल्ली और मुंबई के हमारे सभी सामुदायिक संवाददाताओं का।
तो नरेन, क्यों ना अब काम की बात हो जाए।
दोस्तों पिछले सप्ताह हमने आपको दिल्ली की बसों और मेट्रो ट्रेन के रूट्स के बारे में जानकारी दी थी,
और इस बार हम आपको जानकारी देंगे मुंबई की बसों और ट्रेनों के बारे में।
मुंबई।
दोस्तों मुंबई भारत के प्रमुख शहरों में अपने बेहतर, सुरक्षित और व्यवस्थित बस ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के लिए जाना जाता है। यहाँ पर बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट की बसें चलती हैं, जिन्हें बेस्ट या बीएसटी की बसें भी कहा जाता है। इनका रंग लाल होता है और ये सिंगल और डबल डेक होती हैं। इनका नेटवर्क काफी फैला हुआ है जो शहर के सभी इलाकों को आपस में जोड़ता है। इसके अलावा ये बसें कुछ बाह्य उपनगरों को भी जोड़ती हैं, जैसे नवी मुंबई, ठाणे, मीरा भयंदर वगैरह।
सभी बसों पर मराठी और अंग्रेजी भाषा में उनका रूट नंबर और उनका अंतिम पड़ाव लिखा होता है। आप टिकट बस में मौजूद कंडक्टर से ले सकते हैं।
शहर में सभी बस स्टॉप्स पर नंबर होते हैं और कुछ बस स्टॉप्स पर रूट की भी जानकारी दी हुई होती है। बस पकड़ने के लिए आपको बस स्टॉप पर लाइन में खड़े होना होगा और पीछे के दरवाजे से चढ़ना होगा और सामने के दरवाजे से उतरना होगा।
बसों में महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और विकलांगों के लिए सीट की अलग व्यवस्था होती है।
आप किसी जानकारी के लिए या फिर किसी शिकायत के लिए बस कंट्रोल रूम से संपर्क भी कर सकते हैं। वहां का नंबर है 02224143611।
और अब बात करते हैं मुंबई की जीवन रेखा मानी जाने वाली लोकल ट्रेन्स की। इनकी तीन लाइनें हैं, वेस्टर्न लाइन, सेंट्रल मेन लाइन और हार्बर लाइन।
ट्रेन में फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के कंपार्टमेंट होते हैं। फर्स्ट क्लास वाले कंपार्टमेंट के बाहर लाल पट्टियां बनी हुई होती हैं। इसके अलावा ट्रेन में लेडीज कंपार्टमेंट भी होता है जिस पर हरी पट्टियां बनी होती हैं।
और जहां तक बात है सेकंड क्लास की, ये काफी सस्ता होता है। अगर आप रोजाना ट्रेन से सफर करते हैं तो इसके लिए आप महीने का पास भी बनवा सकते हैं। सभी स्टेशन पर एक टिकट काउंटर होता है जहां से आप अपना टिकट खरीद सकते हैं या पास बनवा सकते हैं। और हाँ, वहीं पर एक चार्ट भी लगा होता है जिस पर अलग अलग स्टेशनों तक जाने का किराया लिखा होता है।
स्टेशन पर ट्रेनों के बारे में नियमित उद्घोषणा होती रहती है। ये उद्घोषणा हिंदी, अंग्रेजी और मराठी तीन भाषाओं में होती है। और हाँ, हर प्लेटफॉर्म पर एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड भी होता है जिस पर अगली ट्रेन के आने का समय दिया जाता है और स्टेशन के नामों के लिए संक्षिप्त शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बोरीवली के लिए बीओ और चर्च गेट के लिए सी।
दोस्तों लोकल ट्रेन दो तरह की होती है, फास्ट ट्रेन और स्लो ट्रेन। फास्ट ट्रेन केवल निर्धारित स्टेशन पर ही रुकती है जबकि स्लो ट्रेन सभी स्टेशन पर रुकती है। अगर आप अपने रूट और ट्रेन के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इंक्वायरी काउंटर पर भी पता कर सकते हैं।
और दोस्तों सबसे जरूरी बात, किसी भी दुर्घटना की सूरत में आप तुरंत रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
और अगर आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आपको हमारा नंबर तो याद है ना, 9197178223। आप हमें अपना सवाल इस नंबर पर SMS कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये तो थी काम की बात, और अब वक्त हो चला है उस सेगमेंट का जिसका हमारे श्रोताओं को बेसब्री से इंतजार है। आज के हमारे सेगमेंट आपकी चिट्ठी के विजेता हैं विनोद सिंह, जो हमें लिखते हैं मुलुंड मुंबई से। इन्होंने लिखा है, मैं विनोद सिंह पहले गांव में मजदूरी करता था। मैं सुबह से शाम तक पत्थर का काम करता, लेकिन फिर भी घर वालों का पालन पोषण नहीं कर पाता था, क्योंकि मेरी आमदनी कम थी और खर्चा ज्यादा। एक दिन मेरे रिश्तेदारों ने मुझे बम्बई जाने की सलाह दी और मैं उनकी बात मानकर बम्बई के लिए रवाना हो गया। मैं रेल से बम्बई पहुंचा। रेल में मुझे बहुत तकलीफ हुई क्योंकि वहां बहुत भीड़ थी। फिर भी तमाम तकलीफों का सामना करते हुए मैं बम्बई आ ही गया। वहां मुझे रहने की जगह ढूंढने में काफी परेशानी हुई, लेकिन फिर भी मैंने काम की तलाश शुरू की। मुझे काम भी मिल गया, लेकिन रहने की समस्या जस की तस थी। फिर मैंने काम पर ही एक आदमी से कमरे की बात की। उसे मुझसे 3,000 रुपए मांगे और मैंने उसे पैसे दे दिए। दूसरे दिन से वो आदमी काम पर ही नहीं आया और इस तरह उसने मुझे कमरे के बहाने ठग लिया। दोस्तों, विनोद जी की इस चिट्ठी से तो हमें यही सीखने को मिलता है कि अनजान लोगों पर भरोसा न करें और ऐसे ही किसी को पैसे बिल्कुल न दें, खासतौर से तब जब आप शहर में नए हों।
विनोद सिंह जी, आपने अपने प्रवास से जुड़े इस अनुभव को हमारे सभी श्रोताओं के साथ बांटा, इसके लिए धन्यवाद। और साथ ही आपको मुबारकबाद, क्योंकि आप हैं हमारे आज के विजेता श्रोता और आपने जीता है एक ट्रैवल बैग। लेकिन नरेन, मेरी एक शिकायत है श्रोताओं से।
शिकायत कैसी अंजलि?
वही के हमारे इस कार्यक्रम जब चले शहर की ओर के इस सेगमेंट के लिए हमें सिर्फ मुंबई से ही क्यों चिट्ठियां मिल रही हैं? भाई, हम चाहते हैं कि हमें इसके लिए दिल्ली और देश के अन्य भागों से भी चिट्ठियां मिले और वहाँ के हमारे प्रवासी श्रोता भी इनाम के तौर पर ट्रैवल बैग जीते, क्यों नरेन?
बिल्कुल सही कहा अंजलि तुमने।
तो चिट्ठी लिखने के लिए हम अपने श्रोताओं को अपना पता बता दें?
हाँ हाँ, जरूर।
हमारा पता है कार्यक्रम जब चले शहर की ओर, 177 बेसमेंट अशोका एनक्लेव पार्ट 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद, हरियाणा 12103।
और अब बारी है संदेशों को सुनने की।
मेरा नाम सरिता है, मैं रुद्रप्रयाग जिले की रहने वाली हूँ। मैं अपनी सहेली कविता को एक संदेश भेज रही हूँ जो रुद्रप्रयाग में रहती है। कविता, मैं तेरी शादी में नहीं आ सके उसके लिए मुझे माफ़ करना, क्योंकि मेरा स्कूल खुल गया है। नाराज़ मत होना और फिर कभी घर आऊँगी तो ज़रूर आऊँगी तेरे घर।
मेरा नाम किशन है, मैं जिला अल्मोड़ा रानीखेत का रहने वाला हूँ। मैं अपने पापा को संदेश भेज रहा हूँ। मेरे पापा का नाम श्री लक्ष्मी नारायण है, जो रानीखेत में रहते हैं। पापा, मैं यहाँ पे ठीक ठाक हूँ, आप अपना ध्यान रखना। आपने कहा था कि एक सस्ता सा फ़ोन भेज देना, लेकिन मैं अभी नहीं भेज पा रहा हूँ। जब कोई घर आएगा तो मैं उसके हाथ भिजवा दूँगा।
मैं नौ रुकमणि रावत है और मैं दिखोल गाँव की रहने वाली हूँ। मैं रेडियो का माध्यम से बोल और बम्बई में जब मेरी बोली सुन दे रही और मेरे नौनियाले की शादी सोभा सिंह की, तो जरूर है जाए घर। मैं तेरा फोन ढूंढने की कोशिश करी पर तेरे फोन नहीं मिली, मैं बहुत बड़ी खुशी वाली, तो जरूर घर रह जाए।
तो दोस्तों, ये थे आपके संदेश
और उम्मीद है कि आपके संदेश आपके परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों तक जरूर पहुंच गए होंगे।
और अगर आप भी अपना कोई संदेश अपने परिवार तक या शहर में काम कर रहे अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त तक पहुंचाना चाहते हैं तो तुरंत हमें SMS कर दीजिए।
हमारा नंबर है 9197176782।
तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लेकिन जाने से पहले एक और जरूरी बात, हमारे सभी प्रवासी दोस्त मिलजुल कर अपना एक क्लब तैयार करें और उस क्लब से जुड़ी गतिविधियों के बारे में चिट्ठी लिखकर हमें बताएं। हम आपकी चिट्ठी को अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे और जो चिट्ठी सबसे ज्यादा पसंद आएगी उसे दिया जाएगा एक आकर्षक इनाम।
तो इसी के साथ इजाजत दीजिए,
नमस्कार।
चले शहर की ओर।